हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तो वो शांत ही रही। तभी वो ड्राइवर बोला था, जानती भी हो कितनी महंगी गाड़ी है ये, फटाफट से अपनी गाड़ी को साइड में लेकर आगे बढ़ो यहाँ से। तभी अंदर से आवाज़ आई, आना विकास, हेलो, सारी गलती तुम्हारी है। कोई ऐसे आता है क्या? क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना होता है? अगर तुम्हें ओवरटेक करना था तो कुछ तो सिग्नल देते, हॉर्न बजाते, कुछ तो करते, ऐसे सीधी गाड़ी लेकर निकल गए तुम लोग। ये सुनकर ड्राइवर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने तुरंत ही अपने मालिक को इन्फॉर्म कर दिया कि किस तरीके से गाड़ियाँ टकरा गई हैं। उसका मालिक इस वक्त अपने लैपटॉप में पूरी तरह से बिजी था। उसने ज्यादा ध्यान दिए बिना कहा, फटाफट से चलो राकेश, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, इम्पॉर्टेंट काम है। अब ड्राइवर तुरंत छलक के पास आया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अगर अभी मुझे इतनी जल्दी नहीं होती तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखा देता। वैसे भी मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इस तरह की ग्रैंड और ब्रांडेड गाड़ियाँ लेकर सड़क पर निकल जाती हो और जानबूझकर लोगों की गाड़ियों से टक्कर मारती फिरती हो, ताकि बाद में अच्छी खासी मोटी रकम वसूल सको। कितनी चालाक होती हो तुम जैसी धोखेबाज लड़कियाँ। ड्राइवर की इस तरह की बेइज्जती झलक बर्दाश्त नहीं कर पाई। कब उसने मुट्ठी बांधी और उसके नाक, मुंह और माथे पर मुक्का मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला। एक ही मुक्के में उस ड्राइवर की हालत खराब हो चुकी थी। उसे जोरों से चक्कर आने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल वहीं गिर जाएगा। उसके मुंह से खून बहने लगा था, नाक से भी खून निकल आया था और वो जोर से चिल्ला उठा था, लेकिन झलक बेपरवाही से वहीं खड़ी रही थी। इसी बीच जैसे ही अंदर बैठे उस गाड़ी के मालिक, जिसका नाम आदित्य राणा था, ने अपने ड्राइवर की चीख सुनी, वो चौंकते हुए तुरंत बाहर निकला। उसने ड्राइवर के चेहरे की तरफ देखा जहां से खून बह रहा था। आदित्य ने फटाफट अपना रुमाल निकाला और ड्राइवर को घाव साफ करने के लिए दे दिया। फिर गुस्से से घूरते हुए ये देखने लगा कि आखिर किसने उसके ड्राइवर पर हाथ उठाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र झलक और अनामिका पर पड़ी, वो पूरी तरह से हैरानी में डूब गया। वो बिना पलक झपकाए झलक को घूरता रह गया। वहीं ड्राइवर बोला, साहब पुलिस को बुलाइए, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया है, इस लड़की ने मारा है। अब तक अनामिका का भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, ताकि हम तुम पर हैरासमेंट का केस लगा सकें। तुमने क्या कहा था हमें, बदतमीज, और अब कह रहे हो बेवकूफ़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसी बातें बोलने की? ये तो शुक्र मानो कि मेरी बहन ने सिर्फ तुम्हें एक मुक्का मारा है। अगर उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता ना, तो गोली मारकर तुम्हारा भेजा उड़ा देती, समझे तुम? अनामिका ने जैसे ही इस तरह से झलक का नाम लेकर उसे डराया, वो ड्राइवर वाकई डर गया था। झलक की आंखों में उसे इस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा था जिसने उसकी रूह तक हिला दी थी। लेकिन अब आदित्य राणा का सब्र जवाब दे चुका था। वो गुस्से में झलक की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है, क्या गुंडागर्दी मचा रखा है आप लोगों ने? क्या आप लोग शहर में नए हो या बदतमीजी करना ही आपकी आदत है? पहले क्लब में हंगामा और अब यहाँ सड़क पर भी वही हरकतें। जैसे ही आदित्य ने क्लब का नाम लिया, झलक को सब याद आ गया। वो फटाफट बोली, अरे अब समझ में आया, तुम वही हो ना जिस पर मैंने उस दिन चांटा मारा था। ये सुनते ही ड्राइवर की हालत और खराब हो गई। उसे याद आ गया कि उसका मालिक पहले ही इस लड़की से पिट चुका है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो फटाफट जाकर गाड़ी में बैठ गया। इधर आदित्य थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया था। वो इधर उधर देखने लगा जैसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन झलक ने एक बार आदित्य को घूर कर देखा, फिर अनामिका का हाथ पकड़ा, उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठकर बिना एक भी शब्द बोले गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक बार फिर वही लड़की उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उसके सामने से चली गई थी और वो बस खड़ा होकर देखता रह गया था। उसके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वहीं वो ड्राइवर अब थोड़ा हिचकिचाते हुए आदित्य की गाड़ी के अंदर बैठने के बाद बोला था, साहब बस एक बात पूछनी थी, क्या वो लड़की ठीक कह रही थी? क्या उसने आपको भी मारा था? क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसे अभी मेरे साथ हुआ? जैसे ही ड्राइवर ने ये बात थोड़े भोलेपन से पूछी, आदित्य का पारा पूरी तरह से चढ़ गया। वो चीखते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। आदित्य राणा हमेशा अपने स्टाफ और आसपास के लोगों से बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता था। उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार उसके मुंह से इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। बिना कुछ बोले उसने अपने चेहरे से खून अच्छे से साफ किया, खुद को थोड़ा संभाला और फटाफट से गाड़ी मॉल की ओर बढ़ा दी। दरअसल आदित्य राणा की मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि उसी मॉल में होने वाली थी जहां झलक और अनामिका जा चुकी थीं। उधर गाड़ी में अनामिका झलक को देखते हुए बोली, यार झलक, दो बार उसी आदमी से पंगा हो गया है, कहीं अगर उसने दादाजी से हमारी शिकायत कर दी तो? वैसे भी हमारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं है कि हम असल में कौन हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में हर कोई जानता होगा। फिलहाल देर ना करते हुए झलक ने गाड़ी सीधे मॉल के सामने लगा दी। गाड़ी की चाबी पार्किंग वाले को पकड़ाते हुए वो तुरंत मॉल के अंदर चली गई। अनामिका भी फटाफट उसके पीछे पीछे जाने लगी। चलते चलते अनामिका बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड खराब हो चुका है, लेकिन देखो मुझे लगता है जैसे ही हम शॉपिंग करेंगे हमारा मूड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी, बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। झलक ने कोई जवाब नहीं दिया और फटाफट कपड़ों के सेक्शन में आ गई। वहां अनामिका ने अपनी आदत के मुताबिक एक से बढ़कर एक ब्रांडेड गाउन और कपड़े उठाने शुरू कर दिए थे। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी। अनामिका बिना झिझके उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं? अनामिका ने उस लड़के को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गई, लेकिन असल में वो लड़का कबीर चौहान था। वही कबीर जो उस रात उससे मिला था जब हालात कुछ और ही थे। जैसे ही कबीर ने अनामिका को देखा वो पूरी तरह से चौंक गया। वहीं अनामिका भी उसे पहचानते ही बोल पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सॉरी, मैं उस दिन तुम्हें ठीक से थैंक यू तक नहीं बोल पाई थी और सॉरी भी नहीं कह पाई थी। कबीर अपने सामने खड़ी उस प्यारी सी लड़की को देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं, आप मुझे थैंक यू और सॉरी किस लिए बोलना चाहती हैं? क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं? अनामिका बोली, उस दिन के लिए सॉरी भी भूल गई थी और आपको थैंक यू करना भी भूल गई थी, उसके लिए भी सॉरी। ये सुनते ही कबीर अचानक जोर से हंस पड़ा। कबीर को हंसता देखकर झलक ने उसे घूर कर देखा और दांत भींच लिए। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी सॉरी और थैंक यू दोनों एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारी ये दोस्त हमेशा ऐसी क्यों रहती है? ऐसा लगता है जैसे किसी की जान ले लेगी या आंखों से ही मार डालेगी। आंखों में देखो कितनी खतरनाक लगती है। ये कहते हुए उसने झलक की तरफ इशारा किया। तुरंत अनामिका ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे झुकने का इशारा किया। कबीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो हल्का सा अनामिका के आगे झुक गया। अनामिका उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, इसे छेड़ने के बारे में सोचना भी मत, ये सच में किसी का खून भी कर सकती है, बहुत खतरनाक है।
अनामिका के इतना पास आने से कबीर के पूरे शरीर में एक अजीब सी झुनझुनाहट दौड़ गई। जिस तरह से वो उसके कान में फुसफुसा रही थी उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। कबीर ने मन ही मन सोचा, ये लड़की जितनी प्यारी है उतनी ही खतरनाक भी है, इससे बचकर रहना पड़ेगा, कहीं मेरी सालों की ब्रह्मचर्य वाली तपस्या भंग ना हो जाए। दरअसल कबीर ने खुद से वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला किया था क्योंकि उसे प्यार में एक बहुत ही तगड़ा धोखा मिला था।